सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन चौधरी और आज हम चर्चा करेंगे जन विश्वास बिल 2026 पर और वो किस तरीके से विश्व निवेश को बढ़ावा देता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपशिखा सिकरवार जी। दीपशिखा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
धन्यवाद अर्जुन।
और इस कार्यक्रम में हम दो हिस्सों में इसको बांटेंगे। पहला हिस्सा होगा प्रॉपर्टी टैक्सेस पे हम बात करेंगे, किस तरीके से न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट में अमेंडमेंट्स आई हैं, संशोधन आया है और वहां पे बिल्डिंग टैक्स और वेकेंट लैंड टैक्स किस तरीके से लागू किया जा रहा है। हम बात करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी पर, किस तरीके से वो बेस वैल्यू को रेकमेंड करता है, ये मूल्यांकन कैसे होता है। और दूसरा होगा हार्डशिप एंड एनामली कमेटी, किस तरीके से शिकायतों को ये जो है किस तरीके से उसको एड्रेस करेगा। दूसरा हिस्सा होगा हमारे चर्चा में कि जो बाकी चीजें हैं, किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से व्यापार को क्या फायदा मिलेगा। दीपशिखा जी, हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस पर और यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया जा रहा है बिल्डिंग्स पर और जो वेकेंट लैंड है इस पे आप हमारे जो सुनने वालों को क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये जो वेकेंट लैंड है क्या ये बिजनेस के उपयोग में आ सकता है।
बिल्कुल अर्जुन, जैसा कि आपने कहा, हम जानते हैं कि जन विश्वास जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, इस दिशा में सरकार की तरफ से की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिससे बहुत पुराने जो कानून है, बहुत पुराने जो प्रोविजंस हैं, जो बहुत सारे कानूनों में बैठे हुए थे, जिनकी वजह से छोटे छोटे अपराधों के कारण लोग जेल जा सकते थे, उनको सरकार ने दूर करने की पहल की है। जनविश्वास एक से अब ये जनविश्वास दो लाया गया है। आपका जो सवाल था प्रॉपर्टी को लेकर के, खास तौर से म्यूनिसिपल एरिया, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल एरिया के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसमें अगर आप देखें तो नया एक फ्रेमवर्क जो है, यूनिट एरिया मेथड लाया गया है, जिससे कि कर जो है उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी टैक्स जो है, टैक्स और जो खाली जगह है, खाली लैंड है लोगों का, उसमें उसको बाइफरकेट किया जाता है और उसकी वजह से लोगों पर, प्रॉपर्टी ओनर्स पर, उनकी जो लायबिलिटी है कर की, वो 30-50% तक कम होने की आशा है। दूसरी बात है कि ये काफी हद तक होम ओनर्स के लिए, जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनके हार्डशिप काफी हद तक कम करेगा। इस प्रोविजन को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है ताकि जो माइनर टैक्स के, अगर आपके भुगतान में देरी थी, उसको लेकर के कुछ भी अगर लैप्सेस थे, उसकी वजह से अगर आपको जेल का जो प्रावधान था उसको पेनल्टी में बदला गया है। इसको सिटीजन्स के लिए और फ्रेंडली बनाया गया है। उसके अलावा जो है, अगर आप देखें कि बहुत सारे ऑफेंसेस जो थे, जहां पर डिफॉल्ट होता था रिटर्न फाइलिंग में, या अगर गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उन सब को जो है पेनल्टी में तब्दील कर दिया गया है, जहां पे पहले जेल हो सकती थी। उसके अलावा एक नया ढांचा बनाने की बात है, एक नई वैल्यूएशन कमिटी बनाई जाएगी, जो कि एनुअल वैल्यू जो है वो निर्धारित करेगी लैंड और बिल्डिंग्स की। उसके अलावा एक ग्रीवांस रिड्रेसल, जो आपकी शिकायतें हैं उनको किस तरह से दूर किया जा सके, वो भी बनाने का प्रावधान है। तो ये ओवरऑल जो है, अगर हम बिग पिक्चर देखें तो पूरा जो ढांचा है उसको आसान किया गया है, सुधार किया गया है, तो दोनों व्यवसायियों के लिए भी, और दूसरा है जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी भी जिंदगी को किस तरह से और आसान बनाया जा सकता है, उसके तहत एक बहुत बड़ा ये एक रिफॉर्म इसको कहा जा सकता है।
जो नई दिल्ली के रहने वाले हैं, वहां पे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1994 लागू होता है, इसको अमेंड भी किया गया है और आपने जैसे बताया कि बेस वैल्यू रेकमेंड करता है ये म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी मूल्यांकन, कितना प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना है। ये हमने जो है खाली जमीन की बात की, बिल्डिंग्स की भी बात की है, और किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स पता चलता है कितना देना है और क्या ये रिवीजन के लायक है या नहीं, और शिकायत अगर हो तो आप हार्डशिप एंड एनामली कमेटी में जाके आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। इसमें व्यापार बिजनेस को कोई फायदा है इंडिविजुअल्स के अलावा, हमारे सिटीजन्स के अलावा, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें व्यापार को कोई फायदा मिलता है?
देखिए अर्जुन, वेकेंट लैंड जो है यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा पार्किंग के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, या कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए, कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। बट उसके लिए आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, और खासतौर से दिल्ली मास्टर प्लान के तहत जो है वो लैंड यूज का क्लासिफिकेशन निर्धारित होगा। लेकिन ये प्रोविजन जो लाया गया है इसके तहत काफी सारी चीजें जो है उसमें रीक्लासिफिकेशन में ये आसानी हो जाएगी। तो जो खाली पड़ा है, बेकार पड़ा है लैंड, जो जोनिंग लॉज या चूंकि उसके निर्धारण में दिक्कत थी उसकी वजह से वो एक बड़ी जो हर्डल थी उसको दूर किया गया है। तो इस्तेमाल किया जा सकता है बिजनेसेस के लिए भी, जो भी किसी के पास लैंड पड़ा हुआ है थोड़ा, वो नहीं यूज कर सकता क्योंकि उसका यूज चेंज नहीं हो पा रहा है, तो इसके तहत जो है आसानी हो जाएगी।
और अपराधों में भी कुछ बदलाव आया है, जैसे दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957, जहां पे अगर आपने सूचना नहीं दी बर्थ्स एंड डेथ्स के बारे में, अगर यहां पे कोई लापरवाही होती है तो इसको भी अपराध माना जाता है, या इसको भी हटा दिया गया है अगर हम म्यूनिसिपैलिटी की बात करें। और अगर हम बिजनेस की बात करें, व्यापार की बात करें, तो कई ऑफेंसेस डिक्रिमिनलाइज हो चुकी हैं, जैसे आपने बताया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को लेके कहा गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स, जिसमें जो पनिशमेंट है वो 1 साल का है और फाइन 20,000 रुपए या दोनों। आपको लगता है जेल की जगह अगर कोई पेनल्टी दी जाए, फाइन दी जाए, तो ये और बेहतर होता है? और जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर, या जो कोई भी कारोबार चलाना चाहते हैं, उनके लिए और आसान हो जाता है? फाइन देना और आसान होता है, जेल टर्म फेस करना ज्यादा मुश्किल होता है।
बिल्कुल अर्जुन, और सरकार की तरफ से भी ये पहल की जा रही है। तो अगर आप देखें जो जनविश्वास जो अभी पास किया पार्लियामेंट में, 1,000 से ज्यादा जो ऑफेंसेस हैं उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। 784 प्रोविजंस हैं, तकरीबन 79 सेंट्रल एक्ट्स हैं जिनको अमेंड किया गया है, और इनमें जो क्रिमिनल प्रोविजंस थे उनको दूर किया गया है। 700 से ऊपर जो प्रोविजंस हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए हैं, और दूसरा जो है ईज ऑफ लिविंग के लिए किए गए हैं। तो सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है इन सारे कानूनों में, जो क्रिमिनल प्रोविजंस थे बहुत सारे सेंट्रल एक्ट्स में, आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की बात की, उसके अलावा 79 सेंट्रल एक्ट्स हैं जहां पे ये बदलाव किए गए हैं। जहां पर क्रिमिनल प्रोविजंस थे वहां पर सिविल पेनल्टी इंट्रोड्यूस की गई है। बहुत सारे छोटे छोटे जो ऑफेंसेस के लिए जहां जेल हो सकती थी वहां पे पेनल्टी इंट्रोड्यूस की गई है कि आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है, कोई आपके रिटर्न फाइलिंग में त्रुटि हो गई है, कुछ आपने मिस कर दिया है भरते हुए, तो ये है कि वहां पर जेल को और फाइन को पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया है।
अगर हम ये बदलाव देखें, क्योंकि जो 2025 का बिल था उसमें 17 सेंट्रल एक्ट को अमेंड किया गया था, और 2026 वाले बिल में जो अभी लोकसभा राज्यसभा में पास किया गया है उसमें 80 सेंट्रल एक्ट को अमेंड किया गया है, जिसमें आपने जैसे बताया कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और रैशनलाइज भी किया गया है। आपको लगता है कि इसका जो लेगेसी है, इसका जो बैकग्राउंड है, वो वेस्टर्न क्रिमिनल सिस्टम से आया है, जहां पे अपराधों को दो हिस्सों में बांटा गया है, फेलनी एंड मिसडिमीनर। फेलनी में जहां पे जेल टर्म होती है, और मिसडिमीनर जहां पे जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो तब्दील की जाती है इनटू अ सिविल पेनल्टी।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें बहुत बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे कानून थे बहुत पुराने हैं और बहुत समय से चले आ रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कोर्ट फीस एक्ट है वो 1870 का एक्ट है, तो इसमें 6 महीने की सजा थी और फाइन था अगर कुछ अनऑथोराइज सेल ऑफ स्टैम्प पेपर है या कोई और वायलेशन है। अब उसको पेनल्टी कर दिया गया है 10,000 रुपए के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस हमारे बहुत सारे कानूनों में बैठे हुए थे। अगर आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से बहुत सारे जो इस तरह के कानून थे कि रिडंडेंट हो चुके हैं उनको भी हटाया गया था। इसके तहत ये किया जा रहा है कि बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो जबरदस्ती का कंप्लायंस बर्डन जो है वो बिजनेसेस के ऊपर आ जाता है, और उनको अगर आप नहीं पूरा करते उन कंप्लायंसेस को तो उसमें इम्प्रिजनमेंट है। तो बिजनेसेस के लिए, खासतौर से छोटे उद्योगों के लिए, ये कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा है। अब जब हम कह रहे हैं कि उन्हें कम्पीट करना है, ग्लोबली कम्पेटिटिव बनना है, तो हम उनके पैर नहीं बांध सकते इस तरह से। अगर हम चाहते हैं कि वो दौड़ें, तो उनको हमको कम्पेटिटिव बनाना होगा। तो ये जनविश्वास बिल जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करता है। इम्प्रिजनमेंट बहुत सारे जगहों से हटाया गया है, जैसा कि आपने कहा कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड से, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, हम डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पुराने कानून थे या पुराने इस तरह के जो प्रोविजंस थे, उनको दूर करना काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमारा उद्योग जगत, हमारे व्यवसायी कंपीट करें और विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाएं, तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं जो उनको कमजोर बनाते हैं और उनके ऊपर अननेसेसरी जो है बर्डन डालते हैं, उसको दूर करने की बहुत जरूरत है।
कुछ इम्प्रूवमेंट नोटिसेज भी आई हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग सेलिंग नॉन स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को लेके बात करता है। इसमें पनिशमेंट है, फाइन, अब आपको जो है पैसा भरना पड़ेगा। आपको लगता है कि जो माइनर फ्रॉडुलेंट ऑफेंसेस हैं उसको भी मिसडिमीनर का वर्ग दिया गया है, और यहां पे आपको लगता है कि व्यापार में और सुधार आ जाएगा और एक तरीके से भ्रष्टाचार भी कम होगा?
बिल्कुल अर्जुन, ये अगर आप देखें कि जिस तरह के कानून व्यवस्था, जिस तरह का ढांचा था और जिस तरह के अब बदलाव किए गए हैं कि आपको अपने शॉप फ्लोर पे नोटिस लगाना है, या अगर वो नोटिस नहीं है उस तरह का, आपको जेल हो सकती है, या अगर आपने सफेदी नहीं कराई है तो उस पर आपको जेल हो सकती है। तो आजकल जो है कोई चूना नहीं कराता है, कोई सफेदी नहीं कराता है फैक्ट्रीज में। परमानेंटली जो पेंट होता है, जो आजकल इस्तेमाल होता है, उसमें आपको जरूरत नहीं होती है हर 6 महीने में या हर साल भर में भी पेंट कराने की। तो उसके लिए जेल का प्रावधान था। तो बहुत सारे इस तरह के जो प्रावधान है, जैसे कि आपने भी बताया, बहुत सारे जो कानून है उनको बदल करके, उनकी जगह पर जेल का जो प्रावधान था वो हटा करके वहां पर पेनल्टी लाया गया। तो ये जो सरकार की तरफ से कोशिश है, ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, जिससे प्रधानमंत्री भी बहुत बार कहते हैं और इस पर बहुत बल भी देते रहे हैं, कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस जो है, जहां पर एनफोर्समेंट जो है वो किसी लैप्स अगर हो जाता है, उसको टेक्निकल लैप्स माने, ये नहीं कि उसकी इंटेंट को क्वेश्चन करे, और खास तौर से छोटे उद्योग, छोटे व्यवसायी, उन लोगों के लिए।
दीपशिका जी, यहाँ पे आपको लगता है कि जो प्रशासन का जो रोल है वो और बढ़ा दिया गया है, और एक तरीके से अगर प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि जहां पे आपको लगता है कि कोई इंफ्रैक्शन है कानून का, नियमों का उल्लंघन है, तो वहां पे सीधे आपको किसी को क्रिमिनल कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, यहां पर ही हम इसको जो है सेटल कर सकते हैं बाय इम्पोजिंग अ सिविल पेनल्टी।
जैसा कि मैंने कहा, एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो एक ढांचा तैयार किया जा रहा है कि जहां पर आपका ऑफेंस छोटा है, अगर आपसे कोई लैप्स हो गया है, आपसे कोई भूल चूक हो गई है, आपको उसके लिए जेल ना भेज दिया जाए, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़ जाए। उसकी जगह ये है कि आप अपना जो फ्रेमवर्क है उसके तहत आप पेनल्टी पे कर दीजिए, और पेनल्टी पे अगर आपसे कोई ऐसी चूक हो भी जाती है, तो पेनल्टी करके आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा।
दीपशिका जी, इसके
तो
लिए कुछ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट की गई हैं जहां पे वो इंक्वायरीज जो है कंडक्ट करते हैं?
सरकार की कोशिश है, और ये देखिए बार बार ये मुद्दा सामने आता रहा है कि हमारे जो कोर्ट्स हैं उनके सामने इतने सारे केसेस हैं कि समय ही नहीं है। अक्सर सुनने में आता है तारीख पर तारीख लग रही है। तो ये जो प्रोविजंस लाए गए हैं जिसके तहत ये है कि तुरंत कार्यवाही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जेल भेजने की कोई बात ही नहीं है।
दीपशिका जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने विस्तार में बात की।
धन्यवाद अर्जुन जी।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में